ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जो माल तुमने कमाए हैं और जो कुछ हमने जमीन से तुम्हारे लिए निकाला है, यानी उशर की बात हो रही है, इसमें से बेहतर हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करो, ऐसा ना हो कि इसकी राह में। अब ये मिसाल सुनते हो जरा आप भी सोचिएगा कि हम कहीं ऐसा तो नहीं करते, ऐसा ना हो कि इसके राह में देने के लिए बुरी से बुरी चीजें छांटने की कोशिश करो। हालांकि वही चीज अगर तुम्हें कोई दे दे तो तुम हर किसी से लेना गवारा ना करो, इल्ला ये कि इसको कबूल करने में तुम आंख मीच लो। तुम्हें जान लेना चाहिए कि अल्लाह बेनियाज है और बेहतरीन सिफात से मुत्तसिफ है। अल्लाह के रास्ते में कैसी चीज देती हूँ। मासी को जोड़ा दें तो उससे पहले बेल भी उतार ली, बटन भी उतार लिए, दुपट्टा भी रख लिया, नुचा पुचा जोड़ा देकर कहते हैं अल्लाह से बुरा अजर मिले। ऐसी कैफियत तो नहीं। तब देना है जब उसका रंग भी खत्म हो चुका हो। फिर कहते हैं रोज तो जोड़ा मांगती हो, अभी पिछले हफ्ते तो दिया था। भाई आपका जोड़ा इतना फटा पुराना दिया, उस बेचारी ने तो दिन भर काम करना है, उसको उसमें क्या मिला होगा। एक तो ये जाती खर्च है, चलें इसमें तो चूंकि लोग सामने होते हैं तो हम दे ही देते हैं, अच्छा ही देंगे। मासी ने चार घरों में जाके बताना भी है ना कि ये बाजी बहुत देती है, और ये तो बाहर से आती है तो बहुत ही देती है। लेकिन जब हम खालिसतन अल्लाह के लिए देते हैं तो क्या देते हैं। मेरी आंखों के सामने ऐसी मस्जिदें हैं कि जहां टूटा फूटा फर्नीचर पड़ा हुआ है, चार चार फ्रिज पड़े हुए हैं और उसमें एक भी नहीं काम करता। क्या कहते हैं, जिसका जो चीज खराब होती है लाके मस्जिद में रख जाते हैं, बाबा चाचा जी इसको बेच लें, इसको रख लें। क्या हमारी नजर में अल्लाह का दीन ऐसे? आज हमारा दीन क्या इस बात का तकाजा करता है कि वहां टूटी हुई कुर्सियां हो, फटे हुए कारपेट हो, बिरयानी की खुशबू आती हो जब सजदा करें हम? ये सोच बदलने की जरूरत है। अल्लाह के रास्ते में बेहतरीन चीज दें, फिर देखिए अल्लाह आपको क्या देता है। अल्लाह कहता है तुम्हें कोई दे तो तुम्हें कैसा लगेगा। सोचिए जब कोई चीज देती हूं तो क्या सोचती हूं, अगर कोई मुझे दे तो कैसा लगे। ये नुक्ता है गौर का, तदब्बुर, गौर। आज मैं अल्लाह के रास्ते में जो देती हूँ, क्या कल कोई मुझे दे तो अच्छा लगेगा। कहीं ये तो नहीं कि बासी खाना दे दे, अगर खाना बचे आप आज ही दे दे। अब इन मुल्कों में रहते हुए ये बातें आपको मेरी वैलिड नहीं लगेंगी, क्योंकि यहां हम दें किसको, लेकिन अपने मुल्कों में भी बहुत सारे लोग ये सुन रहे हैं अल्लाह के हुक्म से। भाई खाना बच गया आपका, फ्रेश खाना पका, आपकी किचन वाली नहीं बनाया, थोड़ा बचा, आपको पता है कि दूसरी दफा कोई नहीं खाता घर में, आप उस गरीब को भी फ्रेश खाना दे दें। उसको रख के 2 दिन के बाद कहेंगे वो गर्म कर लो 2 दिन की दाल, तो आज ही दे दीजिए। कई गरीब फकीर पड़े हुए माशरे में, आप उनको दे दीजिए। लेकिन हम क्या सोचते हैं, नहीं ये सर पे चढ़ जाएंगे। कोई है तस्वुर के पिज्जा हट से 1500 रुपए का पिज्जा आए और उसका एक पीस निकाल कर हम ड्राइवर को देंगे जो अपने बच्चे के साथ खा लो। हम कहते हाँ पिज्जा दो, इनका दिमाग खराब करो। देंगे क्या वो अगले दिन फ्रिज में जो आपके बच्चे के कट कट करके खाए हुए किनारे छोड़े हुए और बचे हुए टुकड़े जो आपने उसको इतना डाल दिया खा नहीं सके, टुकड़े हुए कुतरे हुए, कहते हैं जो अपने बच्चे को खिला लो। ये है अलमिया, जैसा मेरा दिल वैसा मेरे मुलाजिम का दिल, जैसी मेरा टेस्ट उस वैसा उसका। आपने फरमाया कि जब कोई तुम्हारे लिए खाना पकाए तो तुम उसमें से थोड़ा सा एक लुकमा तो उसको खिला दो, खुशबू तो उसको भी आई होगी। ये फर्क मिटाने की जरूरत है। और जब अपनी औकात याद आती है ना कि मेरा अल्लाह की नजरों में क्या मुकाम है, मैं सिर्फ इसलिए बेगम साहबा बन गई कि मेरे घर के बाहर लैंड क्रूजर खड़ी है, मेरा बंगला चार कनाल पे, तो क्या बड़ी बात है चार कनाल पे। अल्लाह की नजरों में अल्लाह को पता है कि आप किस जगह पे और वो आपकी गरीब मासी किस जगह पे। तो हमेशा अपने आप को लो प्रोफाइल पे रखें, शेयरिंग केयरिंग। अल्लाह कहते हैं तुम जो दोगे वो सोचो कि तुम्हें देनी पड़ेगी, तो फिर खाओगे कि नहीं। आज मैं और आप खुद अपने ऊपर लेकर सोचें कि जो नेकियां हम कर रहे हैं या जो चीजें अल्लाह के रास्ते में भेजते हैं, क्या हम अल्लाह से वो वापस लेने को तैयार हैं। शैतान तुम्हें मुफलसी से डराता है और शर्मनाक तर्ज अमल इख्तियार करने की तरगीब देता है, मगर अल्लाह तुम्हें अपनी बख्शिश और फजल की उम्मीद दिलाता है। अल्लाह बड़ा फराख दस्त और दाना है, जिसको चाहता है हिकमत अता करता है, और जिसको हिकमत मिली से हकीकत में बड़ी दौलत मिल गई। इन बातों से सिर्फ वही लोग सबक लेते हैं जो दानिशमंद है। यहाँ हिकमत से क्या मुराद है, माल को कहाँ खर्च करूं, चूंकि आप देख रहे हैं सारी बातें मनी की हैं। इंसान अपनी समझ और फहम और फरासत से थोड़ा खर्च करके ज्यादा जर ले सकता है। मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देती हूँ इस बारे में। आप देखिए कि आपने किसी को एक वक्त खाना खिलाया, वैसे हम देते हैं तो हमें उस वक्त फीलिंग नहीं हो रही होती, लेकिन अगर अच्छी नीयत है तो होगा क्या, किसी को आपने खाना खिलाया, खाना पेट में गया, मैदे में गया, 6 घंटे के अंदर मैदे से वो आगे अंतड़ियों में पहुंच के कुछ घंटे में खारिज, उससे कुछ एनर्जी मिली, ब्लड में गई। अब वो ब्लड जिस समय 2 या 3 दिन तक रहा, इस्लाम की नजर से आप देखें तो आपने अगर किसी एक को खाना खिलाया, उस खाने से जो एनर्जी मिली वो 24 आवर्स उसकी बॉडी में रही ब्लड के ग्लूकोज की सूरत में, मान लेते हैं। उस दिन उस एनर्जी से जितनी नमाजें पढ़ेगा, जो नेकी का काम करेगा, जो मेहनत मजदूरी करेगा, उसमें आपका हिस्सा डल गया। इसलिए हुक्म है कि तुम्हारे घर से मुत्तकी खाएं। किसी की दावत करते हैं ना आप, किसी को इफ्तारी पे बुलाते हैं, तो खुद से सवाल करें, कितने लोग मेरे नफे के आएंगे? उस खाने के बाद जाके तरावियां भी पढ़ेंगे, अगले दिन फजर जमात से पढ़ेंगे, रोजा भी रखेंगे, और कम अज कम अगले दिन की इफ्तारी तक तो मेरे इस खाने की कुछ एनर्जी ब्लड में होगी ना। और कितने हैं जिन्होंने इधर से उठ के जाके ईशा भी नहीं पढ़नी, घर जाना है, और कितने बेरोजा आए हुए मेरे घर में? यकीन करें, अगर ये हिकमत मिल गई ना, तो हमारे खिलाने पिलाने के अंदाज ही बदल जाएंगे। इतनी वाजे हदीस है, ना खाए तुम्हारे घर का खाना मगर मुत्तकी। कैसे मुत्तकी खाएगा? नेकी करेगा, नमाज रोजा, जो उसकी जिंदगी के काम है तुम उसमें हिस्सेदार हो। तो अगर गुनाहगार और बेदीन, और उस गुनाह से कोई उठ के, तो अल्लाह ना करे किसी गुनाह की महफिल में गया, तो आपका नेकी जाया हो गई। हर एक सोचे, चलिए अब इसको इतना तो समझ गया हम, इसके बरक्स आप इस चीज को ले लीजिए, आपने किसको खिलाया? अगली आयतों में थोड़ी सी बात हो रही है दीन के तालिब इल्मों की, वाकया सुना देती हूँ, तो फिर इंशाल्लाह आपको ज्यादा आसानी से बात समझ आएगी। कि अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो जो थे, वो हॉस्टल में रहते थे, आज की जुबान में मस्जिद नबवी के, जिसको दारुल सुफा कहते थे। बाहर से दूर से गरीब इल्म सीखने के लिए आते थे, 70-80 के करीब लोग मौजूद थे, और इससे भी ज्यादा रहे कुछ दौर में। मदीना के लोग क्या करते कि कुछ खाना उधर छोड़ देते, कभी खजूरें छोड़ देते, ये बेचारे उसको खा लेते तो पेट भर जाता। एक मौके पे किसी ने रद्दी किस्म की खजूरें भेजी, जिस पे ये आयतें हैं जो हम पढ़ चुके हैं, ये नाजिल हुई। अब इसके अंदर क्या होता था कि वो लोग जो भी चीजें देते लेते वो खाते, क्योंकि ये बेचारे बाहर मेहनत मजदूरी के लिए जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि फुल टाइम स्टूडेंट्स थे, दीन सीख रहे थे और सिखा रहे थे, और ये स्टैंडिंग आर्मी भी थी। याद रखिए, मुस्लिम हुकूमत में आर्मी या फौज एक डिफरेंट इशू नहीं है, हर फर्द सिपाही भी है, हर फर्द मुजाहिद भी है, क्योंकि हर फर्द कुरान का तालिब इल्म भी है। कितने खर्चे तो मुस्लिम हुकूमतों के वैसे ही कट डाउन हो जाते हैं जब आप लोगों को कुरान पढ़ाते हैं। जो बेहतरीन तरीके से कुरान पढ़ा हुआ शख्स जाकर जिहाद करेगा, वो दूसरा कर सकता है? तो ये आमतौर पे पढ़ते रहते थे, जहां किसी जंग का मौका मिलता अल्लाह के नबी इनको सबको एक आर्मी बना के भेजते, और अंदर ईमान हो, हाथ में तलवार हो, तो कुफर छोटा वो बड़ा वो कट के गिर जाता है। आज आप जदीद वेपन्स दे दें और कानों में अगर कानों की हेडफोन लगे हुए और फिल्में देखते हुए उठ के जहाद के लिए जाएंगे, तो ऐसे फौजियों से कौन डरेगा? तो बहरहाल हुआ क्या कि जिसने किसी तालिब इल्म को खिलाया, अब आप वही मिसाल लीजिए कि जिसकी मिसाल हमने ली, कि आपने उसको खाना खिलाया 24 घंटे के लिए, उसके अंदर एनर्जी की, उसने उसमें सही बुखारी की एक हदीस याद की, कुरान की 3 आयतें पढ़ी, उसके ऊपर अमल किया, गौर किया, वो ताकत उसमें गई ना, उसने कोई एक ऐसा मसला सीख लिया जिसमें उसके बाद उसने सारी जिंदगी अमल करना है, तो आपके वो खाने की एनर्जी कहां तक चली गई? वो तो नस्लों में चली गई ना। इसलिए आज के दौर का बेहतरीन जिहाद जो है ना, वो इल्म पे खर्च करना है। किस वजह से? क्योंकि लोग नहीं खर्च कर रहे। और दूसरी वजह क्या है कि इस नाते से हम अपने सदका जारिया को बढ़ाते हैं। तो हिकमत से जब काम किए जाते हैं, अल्लाह ताला बहुत मदद करता है। वरना कोई किसान अपना बीज ऐसे ही नहीं फेंक देता फर्श पर के बीज ही नहीं उगा। कई लोग तो यकीन करें अपने सदका खिरात और जकात से जान छुड़ाते हैं, राह जाते पक फेंक आएंगे, वो पता चला उन्होंने उसका खाना खा के खत्म कर दिया। तो यहां जो हिकमत की बात पे इतनी लंबी चौड़ी बात की, इसलिए की है कि हिकमत होगी, 1 रुपया भी खर्च करेंगे ना, तो अल्लाह के पास 100 रुपये खर्च करने का अजर होगा, और बाज दफा 100 करके भी हो सकता है हम सिर्फ 100 का अजर ले सके। अल्लाह ताला हम सबको कहते हैं, वमान फकतु मिन नफकते नौ नजर तो मिन नजरें, तुमने जो कुछ भी खर्च किया हो और जो नजर भी मानी हो, अल्लाह को इसका इल्म है, और जालिमों का कोई मददगार नहीं। अगर अपने सदकात एलानिया दो तो ये भी अच्छा है। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है लोगों का कि हम डोनेशंस देते हैं, सदका देते हैं, तो क्या दिखा कर दें? अल्लाह कह रहे हैं बता के दो, बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन अगर छुपा कर हाजतमंदों को दो तो ये तुम्हारे हक में बहुत ही बेहतर है। वजह क्या है आप समझ लीजिए, जब आप सदका दें यानी नफली सदका दें तो छुपा के दें, क्योंकि आपके अंदर ही ना कि तकब्बुर आ जाए कि बहुत सदका दिया और लोग के माशाल्लाह इतना बड़ा चेक दिया इन्होंने। और जब जकात दें, जो आपकी जकात है, तो वो सबके बीच में भी जाके दें कि जी ये जकात है, ये मैंने देनी है, क्यों? कि कहीं भूले में उनको भी याद आएगा, और आप दे रहे हैं तो किसी के जिन में आपकी बड़ाई भी नहीं होगी। ये क्राइटेरियन समझ आ गया। फिर दोहरा देती हूँ, नफली सदका दे रहे हैं तो छुपा के दें, और फर्जी सदका दे रहे हैं तो जाहिर करें। दूसरी सूरत है, किसी इंसान को दे रहे हैं, कोई गरीब है, मिस्कीन है, कुछ है, तो छुपा के दें ताकि उसकी इज्जत नफ्स मजरू ना हो। इसके बारे किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं, किसी स्कूल को दे रहे हैं, किसी भी ऐसे में दे रहे हैं, तो खोल के दें, सामने दें, ताकि उसमें तो कोई इंसान नहीं होता। किसी के डोनेशन बॉक्स में आप डालते हैं तो वो किसी इंसान को तो नहीं मिलता, फायदा क्या होगा कि आपको देता देखकर दूसरों के भी दिल में ख्याल आएगा। तो ये क्राइटेरियन इन आयात में समझा दिया। होगा क्या देने से? फरमाया वायु कब फिर को मिन सही आती कुम, और तुम्हारी बहुत सी बुराइयां इस तर्ज अमल से मिट जाती हैं, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह को बहरहाल इसकी खबर है। हदीस में आता है कि आसमान से इंसान के ऊपर एक मुसीबत आ रही होती है, इधर से उसका सदका जाता है, दोनों आपस में लड़ते हैं, और सदका स्ट्रांग है यानी अच्छी नीयत से दिया हुआ है दिल की खुशी से, तो उस मुसीबत को वापस ले जाता है। मुझे और आपको नहीं पता कि हमारे ऊपर कोई तकलीफ थी आई हुई, हमने कोई सदके में चीज डाल दी तो वो हमारी चली गई। रोड्स पे आते जाते कई लोग कहते हैं एकदम हादसा होते हुए बचा, तो मैं अक्सर मुस्कुराती हूँ, मैं कहती कोई ना कोई सदका काम आ गया होगा, कोई किसी को अच्छी बात कही होगी तो आ गई होगी। कुछ लोगों ने एक मजबूर करना चाहा कि हम इसलिए देंगे जब तक ये लोग नेक होंगे। बास लोग कहते हैं अच्छा तुम नेक होगी फिर तुम्हें जोड़ा दूंगी, नमाज पढ़ोगी तो जोड़ा दूंगी। अब वो मासी 2 दिन नमाजें पढ़ती है, बाजी मैंने नमाजें शुरू कर दी, आप उसको अच्छा सा जोड़ा देते हैं, 2 4 दिन बाद पूछे क्या नहीं बाजी कपड़े ही नहीं साफ रहते क्या पढ़ो। अल्लाह ने इसका जवाब दिया लैसा अलैका हुदा हम। कुछ साहबा ने अपने नॉन मुस्लिम या गैर प्रैक्टिकल जो भी लोग थे उनको सदका देने से इनकार किया, कहा पहले मुस्लिम हो गए फिर देंगे, तो अल्लाह कहते इस तरह पैसों के लालच में इनसे नेकियां ना कराओ, ये फिर फर्क मिट जाएगा कि उनकी नीयत कैसी है। लोगों को हिदायत बख्श देने की जिम्मेदारी आप पर नहीं, हिदायत तो अल्लाह ही देता है जिसको चाहता और बख्शता है, और खैरात में जो तुम माल खर्च करते हो वो तुम्हारे अपने भले के लिए है, आखिर तुम इसीलिए तो खर्च करते हो कि अल्लाह की रजा हासिल करो। 3 सेकंड तक तदब्बुर करिए, है कोई इससे अलावा कोई इंटेंशन? सिर्फ इसलिए कि रब तू राजी हो जा, और जो कुछ माल तुम खैरात में खर्च करोगे इसका पूरा पूरा अजर तुमको दिया जाएगा और तुम्हारी हक तलफी ना होगी। मैं इस जुमले को पढ़ रही हूं ना तो मुझे ऐसे लग रहा है किसी बैंक की तरफ से ये स्टेटमेंट है कि आप जो चेक हमारे पास डिपॉजिट कराएंगे जब चाहे ले लें, है ना? ये ट्रस्ट अक्सर लोगों का पे चेक बैंक में जाता है, ऐसी है ना अमेरिका में, मुझे यहाँ का याद है अभी तक, भी बाकी मुल्कों में जाके कहती थी तो डाउट होता था कि वहां पता नहीं क्या है, लेकिन अब वो वापस सारी बातें मेरे जुबान पे आती हैं तो मैं यकीन से कहती हूँ कैसा ही है। भाई आप पूरा हफ्ता काम करते हैं, सुबह गए शाम तक रहे, पैसे आपने देखे भी नहीं, आपके ऑफिस वालों ने सीधे बैंक को दे दिए। क्यों भाई, आपका दिल नहीं करता कि आप $500 का नोट देखें, $1,000 देखें? किधर गया? बैंक में गया। क्यों गया? यकीन है जब जाएंगे कार्ड डालेंगे चेकबुक पे साइन करेंगे वो $500 मिल जाएगा, ट्रस्ट है ना? क्या इतना भी ट्रस्ट अल्लाह पे है मेरा? खुद से सवाल लिखे, ये तदब्बुर का नुक्ता है। जितना ट्रस्ट बैंक पे है कि मेरा पैसा जाया नहीं होगा, जब चाहूंगी मिलेगा, हालांकि शायद हर वक्त नहीं मिलता, संडे को क्लोज है या कुछ खास रिस्ट्रिक्शंस तो होंगी ना। मैं जब इधर थी तो मैं एक दो दफा मैंने एक चीज किसी की देखी कि आप रात जाते गाड़ी में बैठ के भी पैसे ड्रॉप कर सकते हैं ना इधर। मैं सोचती थी कि पैसे लेने के लिए हर मुमकिन तैयार है। आधी रात को, बल्कि एक मौके पे ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड के पास कुछ कैश था तो वो एनवेलोप में डाल रहे थे, तो गिन के उस पर लिखना होता है और वो ड्रॉप करते हैं, आप जो अमेरिका में वो समझ रहे होंगे मेरी बात। तो मैंने कहा आपने गिना, कहते वो खुद ही गिन लेंगे। वो गिन के बाद में मैंने कहा अच्छा एक दफा क्या लिखा, तो कुछ भी लिखा। मैंने कहा ये क्यों, क्या? कहते जो गलती होगी वो बैंक वाले खुद ही बता देंगे। अंधा इतमाद, बस पैसे फेंको, वो कहते हमें दे जाओ हम खुद ही गिन के पैसे करके नोटों की गड्डियां बना के रखेंगे, इतमाद है। तो क्या एक मोमिन को इतना इतमाद अल्लाह पे नहीं है? कोई बैंक तो हो सकता है संडे को क्लोज हो, कभी कभी एटीएम मौजूद ना हो, वहां जा ना सके, और अल्लाह क्या कहता है जो कुछ माल तुम खैरात में खर्च करोगे इसका पूरा पूरा अजर तुम्हें दिया जाएगा और तुम्हारी हक तलफी हरगिज ना होगी। आज पहला रोज है, हम में से कई जगह पे हमने नियत की थी कि हम जो भी सुनेंगे उस नियत करेंगे, तो मुझे लगता है कि अमल के नाते से सबसे आसान चीज वो माल देना है, क्योंकि शुक्र है शुरू में पर्दे की याद नहीं आ गई तो मसला हो जाता, और बहुत सारी बातें। कोई नियत कर ले 5 पैनी, किसी मस्जिद में रात को जाएंगे जहां डोनेशन बॉक्स दिखेगा यहां नियत कर ले, क्योंकि यहां भूखे लोग तो हमें दिख नहीं रहे, लेकिन कोई नियत छोटी सी कर ले। मैं भी करती हूँ, आप भी, क्या? और अल्लाह कम कहेंगे कि अल्लाह हमने इस आयत को पढ़कर कि तू जो भी हम खर्च करेंगे हमें पूरे का पूरा देगा, कमी नहीं करेगा, आयत 272 को, तो अल्लाह ताला हम इस पे ये खर्च कर रहे हैं, जो जिसकी औकात है करना चाहे कर ले, किसी का से अगर 1 पैनी भी नहीं है तो कोई अच्छी बात किसी को सिखाने की नीयत कर ले कि अल्लाह ताला मके, क्योंकि इस एक्टिविटी से फायदा क्या होगा, अमल की आदत पड़ेगी, फिर ये कुरान यानी वर्सेस टू रीड नहीं होंगी बल्कि वर्सेस टू एक्ट अपॉन होंगी, और अल्लाह ताला हमारे लिए इसको आसान कर दे। अब अगली आयतों में वही वाक्य जो मैंने हजरत अबू हुरैरा के नाते से आपको थोड़ा सा छेड़ा था, लिल फुकराए अल्लज़ीन उख्सिरू फी सबीलिल्लाह, خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گھر گئے کہ اپنی ذاتی قصبے معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے، یعنی فل ٹائم ڈیووٹرز تھے، دین کے لیے علم سیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے، ابو ہریرہ بھی تھے اور بھی تھے، آج بھی ایسے ہزاروں لوگ ہوں گے، کمانا چاہیں تو لاکھوں کما لیں، لیکن پھر وہ دین کو کیسے ہیلپ کریں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی خودداری دیکھ کر نا واقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہے، اس کو ہائی لائٹ کریں۔ یہاں میں خاص طور پہ آپ سب تو ماشاء اللہ ہمارے نیو گیسٹ ہیں نا، وہ لوگ جو کسی بھی پلیٹ فارم پہ دین کو پیش کر رہے ہیں، چاہے وہ مسجد پاکستان کی کوئی مسجد ہے جس کے کارپیٹ پھٹے ہوئے ہیں، یا ویسٹ میں کسی چمکتے دمکتے ادارے کو وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، میں اس آیت کو کرائیٹیرین بنانا چاہوں گی اور اپنے پلیٹ فارم والوں کے لیے بھی، کہ آپ اپنی حیثیت سے، اپنے ادارے کے گیٹ اپ سے، حال حلیے سے کبھی لوگوں کو یہ نہ دکھائیں کہ وی آر ہینڈ ٹو ماؤتھ لوگ۔ ہمارے گھروں میں کھانا نہ بھی ہو نا تو مہمان آ جائے نا تو ہم اس کو بھی اچھے سے اچھا کھلاتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، گھر جیسا بھی ہو لیکن ڈرائنگ روم کو سجا کے رکھتے ہیں کہ مہمان کی عزت ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کی عزت کے طور پہ تو ہم اتنا بھرم رکھیں، تو دین کے نام پہ ہم کیوں نہ بھرم رکھیں؟ کسی دین والے کو دیکھ کر آپ کو یہ فیل نہیں ہونا چاہیے بےچارہ۔ میں ایسی ایسی جگہوں کو جانتی ہوں کہ وہ صرف اس لیے اپنی چھتوں کو ٹھیک نہیں کرواتے، کہتے نہیں یہ پھٹی ہوئی چھتیں دیکھ کر لوگ چندہ زیادہ دیتے ہیں، تو وہ یہ بھی تو کہیں گے نا کہ اس مسجد میں اتنی خستہ حالی ہے، ہمارا ادھر فوکس نہیں ہوتا، ہم ادھر تراویاں نہیں پڑھتے۔ میں نہیں کہتی کہ اسراف ہو، میں نہیں کہتی کہ ایک بلب کی جگہ 10 بلب جلیں، لیکن دین کا کام کرنے والوں کو پریسٹیج کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ آپ گھر میں رو رہے تھے، یہاں آئے تو مسکرائیں، وہاں آپ گندے مندے تھے، جب یہاں آئے تو صاف ستھرے لوگوں کو دیکھیں کہ یہ مہذب لوگوں کی جگہ ہے۔ آپ کے گھر میں گند پڑا ہوا لیکن دین کے ادارے میں گند نہیں دکھنا چاہیے، ادھر سمیل ہو سکتی ہے کھانے کی، ادھر فریگرنس ہونی چاہیے، تب لوگ اس دین کو قابل ادھر سمجھیں گے۔ آج آپ دیکھیے ہمارے معاشرے کے جو لوگ ہیں، جو بچے جن سکولوں میں جاتے ہیں ان کا سٹینڈرڈ کیا ہوتا ہے؟ بہترین ادارے ہیں نا، یہاں کی سب سے خوبصورت بلڈنگیں آپ دیکھیں تو سکولز ہیں، بگ ہیوج۔ آپ وہ سکول میں گئے جہاں کمپیوٹر بھی ہے اور لیبز بھی ہیں اور ڈیسنٹ ہے، آپ ان کو کسی ایسی جگہ سپارہ پڑھنے بھیجتے ہیں جہاں سے اسمیل آتی ہے، وہ جائیں گے؟ آج ضرورت ہے دین کے نام پہ ایسے خوبصورت، صاف ستھرے، خوبصورت سے مراد فینسی نہیں، صاف ستھرے، روشن خیال قسم کے لوگوں کو پریزنٹ کرنے والے ادارے قائم کرنے کی، جس سے لوگ بھی گزریں کہ یہ مسلم کا سکول ہے، یہ مسلم کے بچوں کا، یہ مسلم لیڈیز ادھر بیٹھ کے سیکھ رہی ہیں، پھر دیکھیے گا ہمارا اسلام زندہ ہوگا۔ اپنے اوپر سے نکال دیجیے اس رمضان میں قسم پرسی کا حالت، اور کچھ مشکل لفظ اور بھی ہوتے ہیں اردو میں، بولیے ذرا، بیچارگی نکالیے۔ ہم نہیں بیچارے، ہم نہیں بھوکے، ہمیں نہیں چاہیے پیسہ، ہمیں تمہارا چندہ نہیں چاہیے، ہاں تم دو کہ تمہارے پاس پروجیکٹ بہت ہے، تمہارے مال کی حفاظت ہوگی، تمہارا پیسہ لگے گا، لوگوں کو یہ ٹرسٹ دے دیجیے، دیکھیے پھر لوگ کتنا دیتے ہیں۔ میں حیران ہوتی جب لوگ فنڈ ریزنگ میں لوگوں کی عزت تک پامال کر دیتے ہیں کہ دیں گے نہیں تو کھانا نہیں کھلے گا، یہ بھی امریکن کلچر والے اچھی طرح جانتے ہیں۔ ایک آدھ دفعہ اتفاق ہوا جہاں جانے کا، یقین کرے میرا دل کرے ان کو، میں کو سارا ہم سے لے لو، جان چھوڑو ان کی، دروازے بند ہیں، ہم نہیں جانے دیں گے، کھانا نہیں کھلے گا، 12 بج رہے ہیں، گاڑیاں ہارن ہیں، نہیں جب تک آج کا گول پورا نہیں کریں گے تو دیں گے۔ یقین کیجئے 13 سال مکہ کے تو چھوڑ دیں، 10 سال مدنی دور ہے، مسجد نبوی بھی بنی تھی۔ یہ آپ کو نہیں کہہ رہی کہ اب یہ میرا جملہ باہر جا کے اب لوگوں کے فنڈ ریزنگ حرام ہے اور غلط ہے، میں نے کچھ نہیں کہا، جیسے لوگ ہوتے ہیں پھر ایسے ہی ہوتا ہے، سیدھی انگلیوں سے گھی نہ نکلے تو ٹیڑھی سے تو نکلے گا۔ میں تقابل کر رہی ہوں کہ پچھلے دور کے لوگ لے کے پھرتے تھے کہ ابو بکر جب گھر لے کے آگے سامان تو کہا ابو بکر پیچھے کیا چھوڑا ہے، کچھ پیچھے کے لیے بھی چھوڑ دیتے، وہ کہتے تھے لیں ہم سے لیں، آج ہم کہتے ہیں دو، ہم نے ہاتھ پھیلائے ہوئے لوگوں کے آگے، کہاں سے بیکاری، اور ہم کہتے ہیں ہمیں دو، اور نہیں دو گے تو ہمارا یہ کام رکے گا۔ بھائی ہمارا کوئی کام نہیں رکتا، ہمیں جو پتہ ہے وہ کر رہے ہیں، تمہیں ضرورت ہے اپنا حصہ ڈالنے کی، لاؤ اس کمرے میں جگہ نہیں بڑی کر لو، تم بڑا بنا لو، تم کھلا کر لو، تم ادھر نہیں، تم دور نہیں، قریب نہیں آ سکتے، کر لو، تمہاری مرضی ہے، دیز آر سروسز، بٹ وی کینٹ آسک فار منی۔ جب آپ اس طرح سے دین کو پھیلائیں گے نا تو دیکھیے گا کہ سنبھالے نہیں سنبھلے گا۔ اللہ سے دعا کیجیے آج ہمارا دیندار طبقہ دین کی عزت قائم رکھے۔ کبھی آپ نے کسی کو کہا کہ میرے گھر آئے ہو اتنا ٹیبل لگا، جاتے ہوئے جا کے کہ پلیز ڈونیشن، پلیز آج کے کھانے پہ $200 لگ گیا، تو آپ اتنی بھاری افطاریاں کیوں کھلاتے ہیں لوگوں کو اس کے بعد اگر آپ نے ڈونیشن مانگنی ہے؟ خود کوئی دیتا کھلائیں، مانگے کبھی نہ، سروسز آفر کریں، آپ رکھیں، باکسز بھی رکھیں، زکات کا باکس بھی رکھیں، ڈونیشن کر کے، لیکن لوگوں کی عزت نہ ہرٹ کریں، क्यों कि आज कई मर्द हैं जिन्होंने जाना तो वैसे भी नहीं था, सच्ची बात है, लेकिन वो अपनी बीवियों को क्या कहते हैं, हमने नहीं जाना, जब मौलवी साहब हमें देखते हैं तो वो डोनेशन की बात करते हैं। सारा खुतबा जो है वो चंदे से शुरू होता है, चंदे पे खत्म होता है। मैं ऐसी जगह एक जगह जुमे के लिए गई कि जुमे हमने जो देखा हुआ पढ़ा है हदीस में, हमें पता है जुमे के खुतबे में बोलो भी ना, जिसने किसी को चुप कराया तो उसमें भी उसका अदब जाया हो गया, और वहां वो खुतबा देने के बाद नमाज ही नहीं शुरू कर रहे। वल्लाही, अल्लाह मुझे एग्जैजरेशन से बचाए, कोई गलती हो तो अल्लाह मुझे भी रोक ले। जुमे की नमाज और खुतबे के बीच में डोनेशन बॉक्स फिर रहे हैं, पहले चंदा सारा देंगे तो फिर जुमा पढ़ाएंगे, है ना, लोगों को ब्लैकमेल करने वाली बात, क्योंकि लोगों को पता है जुमा तो उन्होंने मस्जिद में आके पढ़ना है। तो अल्लाह से दुआ कीजिए इस दीन की इज्जत अल्लाह हमसे करा ले, बावकार अंदाज में आया करें दीन के लिए, मुहज्जब डिसेंट खूबसूरत तरीके से इस दीन को दिखाएं, तो दूसरे भी देखेगा इंशाल्लाह इस इस्लाम की इज्जत करेंगे। जिसकी इज्जत घर वाले नहीं करते उसकी बाहर कौन करेगा। हम मुसलमान नहीं अपने दीन की इज्जत करते तो हमारी इज्जत दूसरों ने कहाँ करनी है।